राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुरदास जी महाराज द्वारा 28 दिसंबर 1992 को दोपहर लगभग 2:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जैसे आप हम सब यहाँ आए हैं सत्संग करने के लिए, आप सुनाने के लिए, सुनने के लिए मैं सुनाने के लिए, मन में एक बात बैठी हुई है कि हम यहाँ रहने वाले नहीं, केवल सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं और सत्संग समाप्त होते ही यहाँ से अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। यहाँ बैठे हैं आराम से, बिछड़े के लिए भी है, छाया भी है, आराम भी है, सब कुछ। परंतु एक भीतर धारणा ऐसी बैठी है कि अभी थोड़ी देर के बाद हम तो यहाँ से चले जाएंगे। अगर यही धारणा अपने घरों में कर रहे हैं आप, जो की बात सच्ची है, अपने अपने घरों में आप आए हैं तो उस घर में कोई जन्म करके आ गया और कोई ब्याह करके आ गई, पर आए हुए हैं और जाने वाले हैं। जैसे आए हैं ये जाने वाले हैं यहाँ, ऐसे ही घरों में भी आए हुए हैं और जाने वाले हैं। तो यहाँ रहे तब तक सबके साथ प्रेम का बर्ताव करें, आदर का बर्ताव करें, शास्त्र की रीति से जो प्राप्त हो गया उसका उपयोग करें, व्यवहार से भी हमारे जो अच्छे से अच्छा आचरण हो वो हम करें, सबके साथ हैं तो कितनी बढ़िया बात है। व्यवहार में परमार्थ सिद्धि हो जाए। गीता में ये विलक्षणता है कि व्यवहार में परमार्थ सिद्धि, लौकिक काम करें, घर का काम करें और परमात्मा से की प्राप्ति हो जाए। व्यवहार में क्रूर से क्रूर कर्म है दूसरे को मारना, तो युद्ध में कितना क्रूर कर्म है हिंसा। अर्जुन तत्किन कर्मणि घोरे मांग लियो, जैसी के सब घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, घोर कर्म हिंसात्मक कर्म, गला काटने का कर्म दिन भर। इसमें भी कहते हैं सुख दुख के समय कृतवा लाभा लाभ जया देव तो युद्धा जिससे जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख में क्षमता रखते हुए, क्योंकि ये रहने वाले नहीं है, ना जय रहती है ना पराजय रहती है, ना लाभ रहता है ना हानि रहती है, ना सुख रहता है ना दुख रहता है। ये तो प्रत्यक्ष हमारा अनुभव है, आपने हमारे उम्र में अनुभव ये हुआ हुआ है कि अनुकूल परिस्थिति भी हरदम नहीं रहती, प्रतिकूल परिस्थिति भी हरदम नहीं रहती। तो फिर अपने मन को क्यों बिगाड़े। अनुकूलता में राजी हो गया तो मन बिगड़ गया, अरे प्रतिकूल में नाराज हो गए तो मन बिगड़ गया, अरे फायदा कुछ नहीं। हम राजी हो जाए तो क्या हुआ, वो तो होना है जैसे हुआ है। ऐसे नाराज भी हो जाएंगे तो क्या फायदा होगा, वो तो होना है जैसे ही होगा। केवल हम सुखी दुखी हो जाएंगे, और सुखी दुखी नहीं फिर जन्म मरण होगा, बार बार जन्मना मरना ही होगा। और इसमें अगर समता रखें, राग द्वेष न करें, हर्षोक न करें, तो समर्थ तो आएगा बते पुरुषम पुरुष सभा जिस पुरुष को मात्रा स्पर्श है मानो संयोग पदार्थों का और इंद्रियों का संयोग है, ये जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते तो राजी हो तो अभी व्यथित हो गए हम व्यथा पहुंच गए, नाराज हो गए तो व्यथा पहुंच गई, ये व्यथा न पहुंचे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। मुफ्त में परमात्मा की प्राप्ति से वंचित हो रहे हैं, मुफ्त में खुद नाराज देना राजी नाराज के होकर के और परमात्मा की प्राप्ति से वंचित हो जाए, कितनी हानि कर ली। मनुष्य जन्म हमारा सिद्ध हो जाए, जिसलिए मनुष्य जन्म मिला है, भाई हो चाहे बहन कोई हो कुछ सही नहीं हो, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है, उससे वंचित रह जाएंगे। इस बात से अनुकूलता प्रतिकूलता तो हर नाम आती है। कल परसों भी मैंने कहा कि ये परमा ये संसार का स्वरूप है, अनुकूलता प्रतिकूलता है। जो का क्यों दिखे तो तस्वीर हो जाएगी, और उसमें ठीक और बेठीक हो गए तो ही संसार हो जाएगा। है जो का क्यों रहे, ये तस्वीर थोड़ी है, ये तो नाटक है, खेल है, इसमें होता है। आप खेल खेलते हो तो कभी हार होती है कभी जीत होती है, ये तो होते हैं। कभी ज्यादा हार हो गई कभी ज्यादा जीत हो गई, कभी थोड़ा हार गए थोड़ा जीत गए, ये होता रहता है, ये तो होगा। आग माप आई जो अनिश्चय, आने जाने वाले हैं अनिश्चय है, सांस्कृतिक से स्वभाव इनको सहलो, इनको सहन करो, सहन से अमृतत्व आएगा, पति मुक्ति का पात्र हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो सज्जनो थोड़ी देर के लिए अनुकूलता प्रतिकूलता को सह लें तो सजा के लिए शांति हो जाए। अरे थोड़े विचलित हो जाते हैं, थोड़े रिचार्ज नहीं हो जाते हैं तो खत्म हो गर्म हो जाएगा, गजब हो जाता है। इस वास्ते अपने अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती है। आग माता है जो अनिश्चय, आने जाने वाले हैं अनिश्चय है, क्यों इस बात को याद हो गया, आने जाने वाले हैं अनिश्चय, आने जाने वाले हैं अनिश्चय है, कितनी बढ़िया बात है। हमने देखा है कई दफे सैकड़ों हजारों बार हुआ होगा, ये गिनती नहीं है। एक दिन में कई बार कोई बात हमारे ठीक मन में अनुकूल आती है, कोई प्रतिकूल आ जाती है, कोई ठीक आती है कोई भी ठीक आ जाती है, हमारे मन में आती ही रहती है। ऐसी बात नहीं, घटना भी सामने कोई हमारी मनचाही हो जाती है, कोई हमारे बिना मनचाही हो जाती है, जो हम नहीं चाहते वो घटना घट जाती है, ये भी हमारे सामने आता जाता रहता है। तो ये तो आते जाते रहेंगे भाई, न अनुकूलता ठहरती है न प्रतिकूलता ठहरती है। हमारे में और भगवान में क्या फर्क है, तो बताया है कि प्रसन्नता ज्ञान गताभिषेक तथा नमे वनवास दुख मुखाम्बुजश्री रघुनंदन श्री रघुनंदन भगवान श्री राम जी को सुनाया के कल आप राजगति होगी। उसी दिन कहा जाए आप संयम करो, जो विधाता नाथ निभा दे तो कल राजगति हो जाएगी। सुबह हुआ वो घटना बदली, कौशल्य माँ को पता ही नहीं है, उन्हें जाकर प्रणाम करते हैं राम जी, बेटा को मंगलकारी समय कब है, कितनी देरी है, कुछ खास हो मात है माँ देरी हो जाएगी माँ कर दे, चलो कुछ बेटा खा लो, कि सुबह नहीं निकले क्या पता कितनी देरी लगेगी, अब खुद लौट कर कब आओगे, तो इस बात से कुछ खा लो। माँ तो ये बात कह रही है, राम जी कहते हैं कि माँ मेरे को तो राज मिल गया, राजगति होगी नहीं, राज मिल गया, वनवास का राज मिल गया। माँ को ये कहते हैं कि मेरे को जंगल में निकाल दिया तो दुख हो जाए, मीठे बोले कि मेरे को तो पन्नों का राज मिल गया। क्या बात हुई तो मंत्री पुत्र ने सब सबको सुनाई कि ये घटना हुई है, बड़ी विचार में पड़ गई। अयोध्या मात्र में जैसे कोई वज्र पड़े और दशा हो, जैसे में पत्थर पड़ जाए दशा हो, सब की दशा हो गई, ठाकुर हो गई, सब हुई, सब एक मंत्र आर के सिवा सब दुखी हो गए, छोटे बड़े ऊंचे नीचे सब प्रसन्नता नहीं हुई। मुखाम्बुजश्री भगवान के मुख पर राजगति की सुनकर कोई प्रसन्नता नहीं आई। और अभी कहते हैं कि तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए गांव में नहीं जा सकते, किसी गांव में भी नहीं जा सकते, भगवान की वसुधा हो चक्रवर्ती, प्रातः चक्रवर्ती राजा हो जाऊंगा उसके लिए हुक्म होगा कि गांव में भी नहीं जा सकते, शहर तो दूर रहा, गांव में भी पैर नहीं रख सकते, ऐसा कठोर वचन सुनकर भी तथा न ममरे वनवास दुख था, इस दुख से मुख पर कोई मलिनता नहीं आई, चिंता नहीं आई, कितनी बढ़िया बात। वैसे जो भगवान की मुखाम्बुजश्री है वह मंगल मंगल करे। तो भगवान अवतार लेकर हम लोगों के सामने ऐसी बात बताते हैं कि अनुकूलता से अनुकूलता होने पर कोई प्रसन्न नहीं, और प्रतिकूलता से प्रतिकूलता आने पर कोई विषाद नहीं, दुख नहीं, न प्रदेशित प्रियम प्राप्य नोदित प्राप्य सा प्रियम सर्वोदय समूलो ब्रह्मवत ब्रह्मणी स्थित। गीता में कहा है कि प्रिय को प्राप्त होकर के हर्षित नहीं होता, अप्रिय वाणी सुन करके उद्वेग नहीं होता, हर्षण नहीं होता, ऐसा स्थिर बुद्धि है, ऐसा मूल है, वो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, कितनी बढ़िया बात है। तो यह बात श्रीनाथ जी प्रत्यक्ष देखते हैं, और फर्क देखा तो ये हुआ कि पहले जब सुमंत गए हैं राम जी को बुलाने के लिए, के ने भी जब उनको बुला रहा महाराजा बात फिर कहेंगे ना, उस राम के साथ बुला रहा हूं, तो वहां जाकर चले तो सुमंत के साथ ऐसे तो रघुपुर दीप ही चले रे भाई, वहां दीपक आए, और जाय भी रघुवंश सम्मानी। अब राम जी ने जब देखा हाल तो रघुवंश मणि हो गया। जब बातें सुनते हैं कह गई की तो मन मुस्काए भानुकुल भानु दीपक हुआ, फिर मणि हुई सूर्य हो गया, तेज बढ़ा है। कितनी विशेष बात है, वनवास की बात सुनते ही खुश हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जिस तरह से कोई हाथी का बच्चा हो, हाथी हो और उसको मान लिया जाए, तब बांधने के बाद में छोड़ दिया जाए जंगल में, कितना खुश हो जाता है। जंगल रहने वाले जानवर जंगल में खुश, ऐसे राम जी बंधन से छूटकर जंगल में जा रहे, राज आराम समान किसी पास है और छोड़ करके खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे। तो विपत्ति आने पर प्रसन्नता होनी चाहिए। राम जी के तो कोई पाप पुण्य है नहीं। नारद जी ने कहा तुम्हें कर्म सुभाष होता है ना, आपको शुभ अशुभ कर्म बांधते नहीं, मर्जी वैसे आप करते हो, आप सुख दुख होता नहीं, तो हम लोगों की क्या दशा होती है। थोड़ा देखो तो सही, भगवान कह रहे तुम्हारी क्यों है भाई, तुम भी मत करो। तो मेरे को ऐसा आपने किया तो तुम्हारे को साफ दूंगा, तुम भी अपने श्री के लिए रोते फिरोगे। समझ मेरा ब्याह नहीं होने दिया था, तुम्हारी की दशा हो गई। भगवान कहते ठीक है, बहुत ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भगवान राम जी हम लोगों को दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। भगवान कृष्ण तो कह करके सुनाते हैं, कह करके सुनाते हैं। दुख है सोने से भी करना, सुख है सुखी तस्वीर, समुख है सुख स्वस्थ, सुख दुख है समय कृष्ण समान करने की बात कहते। राम जी ये समान समझता ही है, हो रही है सोचते जो लीला हो जाए, जैसी परिस्थिति आ जाए, जो घटना घट जाए उसमें खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे। तो भाइयों बहनों, अपने जिसमें प्रसन्न हो, सुख आवे चाहे दुख आवे, अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे, ये तो आवेंगे। जैसे दिन होता है तो रात भी होती है, रात होती है दिन भी होता है। रात्रि हो जाए जिसमें कुछ नहीं दिखता और दिन होते ही रेखा रेख दिखने लगती है, तो ये दो समय आता है, सुख का भी आता है दुख का भी आता है। आप हमारे में से कोई ऐसा प्राणी मेरी दृष्टि में नहीं है, है तो बड़ी अच्छी बात है बता देना भाई, कि भाई प्रसन्नता न हो, कोई अनुकूलता सब तरह से ठीक मिले राजी न हो, और प्रतिकूलता आ जाए नाराज न हो। ये तो हमने सुन देखा है, कई बार देखा है, एक दो बार चार बार दस बार नहीं है, हर एक बार देखा है अनुकूलता प्रतिकूलता आई है। आने पर भी रही नहीं है, न अनुकूलता रही है न प्रतिकूलता रही है। आज जो अपनी परिस्थिति चल रही है या परिस्थिति रहेगी नहीं, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमारे मन चाहिए घटना हो जाए चाहे हमारे बेमन चाहिए हो जाए, और टिकेगी थोड़ी नहीं, रहने का स्वभाव नहीं है। आगुआ पाए वो अनित्य, आने जाने वाला है अनित्य है। तो ये आप हम सब पाठशाला में हैं, ये पढ़ाई होती है, यहाँ पढ़ाई होती है। और इनमें पढ़ाई में विलक्षणता है कि पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा होती है, तुम 12 महीना पढ़ाई करे सभी एक दिन परीक्षा आती है। हमारी रोजाना पढ़ाई रोजाना परीक्षा कैसी बढ़िया बात है। सब तक रोजा रह गए पढ़ाई करी और घर पर जा गए तो बस वो परीक्षा आ गई। कभी अनुभव कभी प्रतिकूल ये बात है। इसमें हम फैल क्यों होगा, साफ साफ रहे होगा तो वही जो होने वाला है। नाराजगी होकर के कल बताया था ना वो मार्ग भूल गए तो सब घबरा रहे हैं। बाबा जी मस्ती में चल रहे लोग कैसे महाराज शाम हो रही है जंगल है सामने आज भी कोई दिखता नहीं बस्ती का कोई ठिकाना नहीं क्या दशा होगी। आपको चिंता नहीं होती तो बाबा जी बोले कि भाई रास्ता भूल गए है दुख तो है ही सबको अब चिंता करके उस दुगुना क्यों करें। ये तो हमारे हाथ की बात नाराज होना राजी होना रास्ता भूलना हाथ की बात नहीं तो हाथ की बात नहीं उसकी तो ठीक है पर हाथ की बात है उसमें क्यों दूसरे दुख में हो माने थोड़ी अवस्था रहती है न सुख की अवस्था हरदम रहती न दुख की अवस्था हरदम रहती ये तो बदलती है आगमा पाए। तो ये पढ़ाई है पढ़ाई। हमने एक बात सुनी है आपको मैंने सुनाई है मेरे तो मन में आता है मैं रोजन क्या सुनाऊ बदलती वही है जो रोजन कैसे कोई आप लोग बड़े धैर्यवान हो बड़े मजबूत हो भाई सुनते हो फिर आ जाते हो फिर जाते फिर आ जाते हो मन माता चलो सुनने बोले और सुनने क्या नहीं सुनाएंगे बताओ बाबा जी थे क्या सुनाएंगे बताओ इतनी हमारे को याद नहीं। हम तो जो गीता जी की बातें दूर दूर सुनी है याद की हुई है याद हो गई है वो सुना देते है पीछे वही सुना देते ना सुख भी देते भावो ना भावो भी देते वही गीता के श्लोक वही रामायण की सुपाइया वही बातें वही दृष्टांत वही कहानी फिर भी आप उबते नहीं उगताते नहीं कि हमारे क्या बार बार कहते हुए धन्य है आपको। एक जगह की बात सुनी है कि लोग सत्संग करते थे तो कई वर्षों तक वो संत थे वो सब कभी तो रामायण शुरू कर दो पूरी रामायण सुना दे कभी भागवत शुरू कर दो पूरी भागवत सुना दे कभी गीता करे तो गीता पूरी सुना दे महाभारत सुना दे पद्म पुराण सुना दे ऐसे सुना दिया। तो एक दिन वे पूछने लगे कि भाई तुम रोजाना क्यों आते हो हमारे पास वही बातें जो सुनाते हैं सुनी हुई बात सुनाते हैं आपको हमारे कही हुई बात हम कहते हैं फिर रोजाना क्यों आते हो रामायण सुन लिया भागवत सुन लिया पद्म पुराण सुन लिया महाभारत सुन लिया ठीक है सुन लिया अब वही बातें पीछे ऐसे सत्संग की बातें आप सुनते हो वही बातें सुख दुख समय के साथ ये श्लोक कितनी बार सुनाया होगा कई बार सुनाया होगा तो बार बार क्या सुनते हो इस वास्ते अब इन काम को बंद करो क्योंकि नई बात हमारे पास नहीं और क्या सुनाऊंगा मैं अरे तुम क्या सुनोगे अपने घर पर रहो। तो सत्संग करने वालों में कई कई विलक्षण व्यक्तियां भी होती है कई जगह ऐसी बात होती है महाराज सुनाने वाले से सुनने वालों में बहुत विशेषता ये सुनने वाले आते हैं आदर करने के लिए परंतु तो बातें इतनी विचित्र जानते हैं कि कहने वाला कहने लगता है तब तो वे पहले समझे अब ये कहे अब ये कहेंगे अब ये कहेंगे होशियार सुनने वाले फिर भी सुनते है कान लगा कर आदर पूर्व सुनते तो उन सुनने वाला मैं विशेष रहते एक बुरा आदमी कि महाराज आप जो कहते हो कि बार बार वही बात सुनाते हैं तो क्या सुनते हो तो महाराज बार बार भोजन करते हैं फिर क्या भोजन करते हो भाई गेहूं की रोटी खा ली बाजरे की रोटी खा ली जौ खा ली चना खा ली ज्वार खा ली अब क्या बाकी रहा जो अनाज है वो खा लिए गेहूं की रोटी खाकर देखिए अब दोबारा क्या खावा बाद में रोटी भी खाई है वो खा दिया खुद भर क्या खाऊंगा साग भी खाए वो पहले वो ही खाऊंगा तो फिर बार बार क्यों भोजन करते हैं बार बार भोजन में भूख लगती है इस बात से करते हैं तो महाराज जैसे शरीर में अन्न और जल की आवश्यकता होती है भूख लगती है जब अन्न की जरूरत है प्यास लगती है जल की जरूरत अब तो ये पिया हुआ है कुंड का तो अभी पिएगा कुंड का मिल गया ये तो कई तरह का पानी पी लिया अब पी लिया पानी तो अब क्या पीऊ उसको ये तो पिया हुआ है हमारे देखा हुआ है पीना सके कुएं का पानी इसी बार पी लिया वो क्या पिए अब वो नया कुआ तो ठीक है नया तो वहां पी लेंगे ये तो पिया हुआ है तो रोजाना क्यों खाते हैं क्यों पीते हैं तुम्हारा इस तरह से हम भी सत्संग करते हैं आपको तुम्हारी सुनी हुई बात है कही बात वही हम कहते हैं सुनी हुई तुम सुनते हो नई बात तो है नहीं क्यों आते हो रोजाना रोटी भी नई नई मिलती है नई क्या मिले वो कभी क्यों है जो है चना है ये तो है तो भैया क्या बताएंगे तो सुनो महाराज एक बात सुनाऊ वो कहने लगा कि मैंने सुना है कि सांप और नेवले के आपस में बैर होता है इनकी लड़ाई होती है कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई होती है ऐसे सांप और नेवला नकुल तो इसकी लड़ाई होती है आपस में तुम लड़ते हैं मैंने देखा भी सांप को नेवला को लड़ते हुए मैंने आंखों से देखा वो इधर जाता है वो अपन बैठ गई हो यू बैठ गए यू कूद गई हो यू हो जाता है यू मारता है यू अरे वो तक करके आता खड़े को ऐसे आप उसको लड़ते हैं तो लड़ते लड़ते सांप डस जाता है काट देता है उसको सांप का होता है जहर नौजात बेचारे उसको काटे तो भी वो काटे वो पीड़ा तो होती है बस जहर तो नहीं चढ़ता देवले के जहर सड़ जाता है तो वह से जाकर अपने बिल में वो बोटी वो थोड़ी छाने थोड़ी सू लेता है जहर सड़ जाता है फिर आकर लड़ता है तो जहर तो सर्प के नहीं चढ़ता परंतु तो गाय तो हो ही जाते हैं गाय हो जाता है अंत में मर जाते मार देता है वो देवला सांप को मार देता है सांप इतना जहरीला है सांप बड़ा खून और जहरीला उसको मार देते मर जाता है इस तरह से महाराज हम संसार में काम करते हैं घर में धंधा करते हैं उसमें कोई तो राजी होता है कोई नाराज होता है कोई खुश है कोई प्रसन्न है कोई निंदा करता है कोई प्रशंसा करता है कोई आदर करता है कोई निरादर करता है घर के छोरे छोरे नहीं मानते बताओ जिनको पैदा किया है पाला है अन्न वस्त्र देते हैं आराम देते हैं पढ़ाते हैं प्रबंध करते हैं वे स्वर नहीं मानते माँ बाप के नहीं मानते माँ ने कितना कष्ट सहा है हमारे को पैदा किया हमारा पालन पोषण किया शरीर का दूध बताओ जैसे ये आप हम लोग पड़े हुए हैं ऐसा दूध माँ से जरूर पड़ते हैं माँ का कहना नहीं करते कैसे कपूत बताओ जिस माँ ने ऐसा पालन किया उस माँ की बात भी नहीं मानते कहीं कहीं तो महाराज ऐसी दुष्टता देखी है सुनी है माँ को मानने लग जाए अब इसे माँ क्या करे जवान छोरा हमारी माँ क्या करे, इतना तो बल नहीं माँ में शक्ति नहीं, वो कैसे माँ को मारपीट कर रहे, बाप को मारपीट कर रहे, क्या करे। तो ऐसे मन में दुख होता है कि नहीं, अरे मैंने पढ़ा है पोसा है, एक सज्जन मिले थे हमें ऋषि के साथ, वो उससे शांत हो गया। वे कहते थे जिन लड़कों के लिए मैंने देवता मनाए मनोती मनाई, ये ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, ये जी जाए, ऐसे हो जाए, भगवान से प्रार्थना करी, देवताओं की मनोती मनाई, सब किया, वे लड़के मेरा कहना नहीं मानते। मैं देखता हूँ मैंने कितना किया, पर नहीं करते वो, भाई माँ ने कैसे पालन किया है, कितना माँ ने कष्ट उठाया है, छोटे छोटे बच्चों को देखो, वहीं चट्टी भी जाते हैं, वहीं थूक देते हैं, वहीं पेशाब कर देते हैं, फिर भी माँ गुस्सा नहीं करती। अगर गुस्सा करती तो आपकी हमारी ये दशा नहीं होती। ये छोटे छोटे पड़े थे, मक्खियां नहीं उड़ा सकते, मक्खियां नाक में आंखों में मक्खियां बढ़ जाती है, उड़ा नहीं सकते पड़े थे, माँ पालन करती है। ऐसी दशा में माँ ने पालन किया, आप हम देखते याद नहीं, हमारे को तो याद नहीं है, परंतु देखते तो है ना, यही दशा हमारी थी कि हम ऐसे व्याख्यान देने वाले जन्म में थे, सुनाने वाले जन्म में ऐसे दशा तो यही थी भाई। ऐसी दशा में जिस माँ ने पालन किया, हृदय लगाया, प्यार किया, दूध पिलाया, कितना खिलाया, उस माँ से डर जाते, उस माँ का ही गला नहीं बांधते। तो इसलिए से वो बोले कि महाराज घर में जाते हैं, ये है सांप, संसार है सांप, इसमें गुस्सा आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है, ये सड़ जाता है जहर, राग द्वेष, कभी दुखी हो गए, कभी सुखी हो गए, शोक हुआ, कभी चिंता हुई, कभी भय हुआ, कभी उद्वेग हुआ, कभी हलचल हुई, बुआ नहीं मानती, भोग के सास नहीं मानती, नंद कहते भाभी नहीं मानती, प्रजाई कहते कि नंद नहीं मानती, जेठानी नहीं मानती कि जेठानी नहीं मानती, बेटा नहीं मानते, बेटी नहीं मानती, माँ नहीं मानती, शिकायत करते। तो ऐसे हम संसार में काम करते करते जब पीड़ा से पीड़ित हो जाए, राग द्वेष मन में अंतर मच जाए, तब सत्संग में बूटी सुन दे, सत्संग सुन देते हैं तो शांति हो जाती है, फिर वे जाकर फिर काम न करते, आज पर लड़ते लड़ते बड़ा वो जहर से जाता है, जहर से जाते सत्संग करते, सत्संग करते ही शांति आ जाती है। तो संसार रूपी सांप के साथ में हमारी हो रही है लड़ाई, और जहर चढ़ जाता है संसार राग द्वेष, फिर हम क्या करें कि सत्संग में जाते हैं, ये बूटी सूंघ रही, थोड़ी बूटी खा ली, थोड़ी सूंघ रही, शांति आ जाए, सर भाई संसार है, होता है, मानते हैं नहीं मानते हैं, इतिहासों में देखते हैं, कंस ने अपने बाप को कैद कर दिया, और आप राज करता है, आपको कैद तो नहीं किया ने? तो लड़के मानते नहीं, लड़के ऐसे ऐसे आपने सुने है ना, मामा थे, मामा जी समझे, भगवान कृष्ण के मामा थे, माँ का माँ दया भाई, मामा नाम सुन के छोरा छोरी सब रह दिए थे, मामा मामा आया मामा आया, माँ तो एक माँ होती, वो माँ माँ दो माँ है, वो डबल माँ होगी, छोरा राजी बहुत होते हमारे मामा जी आया, हमारे मामा जी माँ का भाई है, प्यार से प्यारा ज्यादा लगती है, माँ अच्छी लगती है, प्यार माँ का भाई आ गया खुशी होती है। वो थे कंस महाराज, कृष्ण भगवान के मामा थे, देवी की भाई कैसा हुआ है, बहन को और बहनोई को भी डर दिए कैद में, पहले कह रहे भाई ये छोटी लड़की बच्ची जल गई है, ये तो तेरे कैसी है तेरी, इसको तो छोड़ दे, छीन करके पटको मार दिए, छोरा छोरी को मार देना ऐसा भी कोई भाई होता है, बहन को मारवाड़ी भाषा में और नुकान नहीं देते है, बहन है बहन को देना चाहिए, उसका देते कपड़ा देते आदर देते है, बहन भांजी को भोजन कराने का पुण्य मानते हैं ब्राह्मणों के जमाने की तरह, बहन सासू को जी मो भाई अपने बहन सासू को करो, बहन सासू उसके बच्चों को मार दे, ऐसा तो कोई आपकी बेटा बेटी हुए जी करा नहीं मान, जो भी कृष्ण भगवान का सगे मामा कोई कुटुंब गए कोई बाहर का हो गए दूसरे जगह, इस वास्ते क्या घबराते हो, कैद में पड़े बहन बहनों की कैद थोड़ी डाल दी, डाल दी कैद में, पिताजी को कैद में कर दिया राज्य कैद के सिंहासन पर खुद, तो इस वास्ते घबराना नहीं होता है, ऐसा बड़े बड़ों को हुआ है, क्या बड़ी बात है इसी। भरत जी ने ये बात सुनी कि मेरी माँ ने राम जी को वनवास दे दिया, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब तक जीती रही के गई तब तक भरत जी ने माँ नहीं कहा, के गई कहती है वरदान फिर को माँ कह दे, तुम माँ कह रहे लायक नहीं, माँ होती है जो बेटे को जंगल में निकाल दे, ऐसी माँ होती है, माँ कैसे कहूं प्यारा बेटा, राम जी जैसा बेटा कितना अच्छा बेटा है, उसको जंगल में निकाल दे तो फिर मैं माँ कैसे कहूँ उसको, मैं माँ की लकड़ी नहीं है, माँ तो अपराध देखती नहीं, अरे अपराध राम जी ने किया नहीं, माँ का क्या बिगाड़ दिया बताओ, अब पिताजी राजगद्दी दे रहे हैं अब क्या करे, वो भी राम जी कहते हैं ये ठीक नहीं है, जन्म में एक संग सब भाई भोजन शयन केजी धरिकाई कर्ण वेद उपवेद विवाह संग संग सब भय उत्साह विमल वंश कर अनुचित एकु अनुबंध भी आए बड़े ही अवश्य को, हमारे विमल वंश में एक रीति खराब है कि छोटे भाइयों को नहीं बड़े भाई को राज देना, अब रीत भैया क्या कहूंगा, ऐसे राम जी जिनके वंश में राजनीति बैठने में संकोच होता है, तो कर्ण वीत उपवीत विवाह साथ हुआ तो राजगति भी साथ ही होनी चाहिए सबको, न्याय तो यही है, परंतु रिवाज हमारे वंश की ऐसी क्या करो, ऐसे राम जी को माँ ने जंगल भेज दिया, पर कोई माँ है ऐसी कोई माँ होती है, के गोद में बहुत खेलते थे राम जी भी, राम जी के भरत के आपस में प्रेम था ना, तो भरत जी के साथ बहुत बार आ जाते, यहीं बैठते यहीं खेलते यहीं सो जाते सो जाते उनको फर्क नहीं मालूम देता था, राम जी को कौशल्या माँ में और केकई माँ में कोई फर्क नहीं, जैसे कौशल्या माँ के गोद में सो रहे केकई भैया के गोद में सो गए वही भोजन कर दिया वही खा लिया, मैं अलग अलग थे तो एक ही माताएं थी दोनों, ऐसे रहते थे, ऐसे प्यार करने वाली माँ जंगल में निकाल दे, राम जी के मन में नहीं आया, विशेष कर देखो तो तो स्त्री अपना दुख तो सह लेती है, पर पतिव्रता हो श्रेष्ठ हो, साधारण भी अपने पति को कोई दुख देता है ना, उसे को राजी नहीं हो सकती, तो उसे दुख होता है। तो राम जी को वनवास में भेज दिया, परंतु सीता जी के मन में कोई फर्क नहीं आया। कई कई माँ की वैसी सेवा करते, चित्रकूट में गए तो कई कई माँ की सेवा करने में फर्क नहीं। फिर राजगति हो गई तो भी राम जी की एक ही माँ की सेवा पर कोई फर्क नहीं लाते। वनवास से आए तो सबसे पहले के एक ही माँ के जाग पुका पड़े कितनी विचित्र था। जिस माँ ने जंगल में भेज दिया, सबसे पहले आए उस माँ के पगों पर पहले नमस्कार करते, कैसे अपनी माँ के पास जाते, तो कितना दर्जा रखते हैं, माँ का आदर करते हैं। तो राम जी में इतनी बात नहीं है, सीता जी में इतनी विलक्षण बात। राम जी फिर भी सह है, पर सीता कैसे सह, परंतु कभी बात नहीं। सीता जी के मन में केकई के प्रति कोई दुर्भाव नहीं। जैसे कौशल्या अम्मा की सास की सेवा करती है, वैसे केकई माँ की वैसे सेवा, वो केकई माँ के प्रति भी श्री सीता जी का भाव बरोबर। भरत जी के मन में वहम था कि राम जी तो नाराज न होंगे, परंतु भाभी जी नाराज हो ही जाएगी। राम जी को वनवास दे दिया हमारी माँ ने, तो हमारे पर भाभी जी जाजी नहीं होगी, सीता जी जाजी नहीं होगी। वनवास में गए, सीता जी के चरणों की रज्जी लेकर के भरत जी ने अपने सिर पर चढ़ाई। बात वो चढ़ाई सीता जी ने आशीर्वाद दिया, तो वहां देखा अपडर बीता। भरत जी को डर लगता था पहले कि भाई सीता जी नाराज हो जाएगी जरूर, परंतु फिर विचार करे अपडर है, अपना ही डर है, उनमें है ही नहीं कोई विचार नहीं। जैसे पहले स्नेह था केकई माँ का सीता जी के प्रति, अपना महल दिया मैंने सीता जी को, बढ़िया महल, वो सीता जी को मुख दिखाएगा, इतना स्नेह है आपस में, वो पेड़ में इतने पेड़ में सीता जी के मन में कोई फर्क नहीं। सीता जी वैसे ही सेवा करती है जैसे पहले सेवा करती थी, वैसे ही कोई फर्क नहीं। केकई के बड़ा पश्चाताप हुआ, दुख हुआ, तो भाई अपनी गलती का दुख अपने को भोगना ही पड़ता, सबको होता है। अपनी गलती करो तो अपने दुख को चोट पहुंचेगी, वो जैसे मूठ चलाते हैं किसी पर, वहां नहीं लगे तो मारने वाले को मार दे, वो इस तरह से दूसरे को दुख देता है, उसके चित्त में शांति नहीं होती, अशांति पैदा होती है। वे ऊपर के लोभ के कारण से सहने में नहीं, परंतु अन्याय है वो खुद अन्याय करता को खा जाता है, तो खा जाता है वो, तो वो सुखी तो नहीं हो सकता है। अरे मंत्रा तो कहते हैं 14 वर्ष तक जलती ही रही, बड़ा दुख हुआ उसको। राम जी जाकर रूम में कहते तू तो माँ की तरह है, जैसे माँ कौशल्या की गोदी में खेला हूं ऐसे तुम्हारी गोद में खेलने वाला हूं मैं वही हूँ जो तू गोद लेती थी गोद और मेरे को खिलाती थी तो तू माँ के समान है। राम जी का बताओ, तो ऐसी बातें सुनते हैं ना तो ये क्या है, ये आपके संसार का जहर चढ़ जाता है उसकी ये दवाई है। भाई ऐसे क्यों करो, अपने सीता माता ने कितना सह लिया, कहीं कहीं बताओ कितना सहा, और भद्री पर कितना स्नेह है। केकई ने तो राम जी को वनवास दे दिया, और कौशल्या एकांत में सुनने वाली से कहती है मोई भरत कर सोच, राम जी कहती है कितनी विचित्र बात, जैसे कैकेयी का राम जी के साथ संबंध है, ऐसा तो कौशल्या का भस गया सब संबंध कोई दूसरे का है, पर कौशल्या के मन में ये बात राम जी की माँ है कोई मामूली बात नहीं है। महाराज राम जी जिसको माँ के जिसका दूध राम जी पिए और माँ के पगा पड़े, कितना माँ का दर्जा ऊंचा है, कितनी श्रेष्ठ है, तो उनका भाव भी ऐसा ही है। भरत प्रसन्न रहे, बस भरत पर स्नेह कम नहीं है, समझे। ननिहाल से आते हैं कौशल्या के पांव पड़ते हैं तो कौशल्या के दूध आ जाता है, बच्चे थोड़े ही है, छोटा बच्चा तो गोद में आ गए तो माँ के दूध आ जाए। अब बड़े सारे आए भरत शत्रुघ्न, राम जी बनवास में चले गए, भरत आर पगा पड़ता है गोद में आता है तो माँ के दूध आ जाता है, स्नेह टपकता है, स्नेह प्यार स्नेह आ रहा है, ऐसा क्या जुम्मे बात। कभी दोष नहीं दिया कि केकेयी ने गलती करी हमारे, और सीता जी ने नहीं कहा, लक्ष्मी जो तेज रहे लक्ष्मी को तो मन कर खोबन जाए, पीछे सबूत आ गए मिले, पर लक्ष्मी जी के मन में तो खोब नहीं मिटता है, केकेयी माँ ने ऐसा कहा। और भरजी सु माँ का नहीं छोड़ दिया, पर राम जी के मन में फर्क नहीं आया, आज ये बात है सीता जी का फर्क नहीं आया, आज से जाता है। स्त्रियों में सहने की शक्ति कम होती है और फिर भी खास अपने प्राणपति को बिना कसूर जंगल में निकाल दे, इतने पर स्त्री को गुस्सा न आवे, कोई मामूली बात नहीं, ये जगत जरूरी है, सीता जगती माँ है। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जगत की माँ, जगत की माँ कितनी विशेष कृपा है उसकी, कितनी विशेष दया है सब जीवों पर। जयंत्र ने किया श्वास मारी खून निकाल दिया, वो जयंत्र आ पड़ता है तो उल्टा पड़ गया, तो सीता जी ने उल्टा कर लिया भगवान ने तरफ, माँ है माँ तुम्हें माँ कह रहे, अब जब जल नहीं कह रहा नहीं कुछ कुछ को माँ किसको कहे, जो माँ कह रहा तो ऐसी बात है। तो सीता जी का कितना विचित्र स्वभाव, बालकों में भी देखो ना तो छोरा है उस पिता गुस्सा कभी माँ को भी आ जाता है, पर आने पर भी माँ बहुत ध्यान रखती है, कुछ भी कर रहे बालक है चाबर है सोचे चाबर है ऐसा कर माँ को दे देती है प्यार कर देती है। तो ये बातें जो संसार में राग द्वेष होता है राम जी के घर में भी हो गया है, बताओ दशरथ जी के मजाव घर में खटपट हो गई, ऐसे ये जहर है, संसार रूपी सांप का जहर है। तो इस जहर से तरुणा उठते हैं तो सत्संग में जाते हैं तो वहां ये बूटी मच जाती है, उसको वो लेते हैं जहर सर जाता है। तो महाराज उस सज्जन बोले कि आप कहते हो रामायण सुन ली गीता सुन ली भागवत सुन ली, अब क्या सुनोगे नई बात, हमारे तो नया होता हो जाना, रोटी खा ली फिर क्या खाते हो, पानी पी ले फिर क्या पीते हो, तो मर जाए, जैसे ये शरीर है उसको अन्न जल न मिले तो ये मर जाए, ऐसे ही आध्यात्मिक खुराक है सत्संग थी, इससे ये जीवन हमारा रहता है, नहीं तो मर जाओ हमारा, ये सह नहीं सुनता। दुनिया में सत्संग नहीं करते हैं उनको तो पता नहीं है, पर तो सत्संग करते हैं वे इस बात को जानते हैं कि सत्संग करने से कितनी शांति मिलती है, एकदम जर उतर जाता है संसार का, जर उतर जाता है भाई चलो अपने करना है, ऐसे वो करो तो करो अपने करो, कई घरों में ऐसी लड़ाई हुई है, मेरे सामने बातें आई है, सत्संग करिए उससे सत फल पड़ गया एकदम। कितने गुस्से में कितने आए सत्संग सुनी ठीक हो गया, अब कोई बात करो। कितनी चिंता कितना ही शोक, रोते रोते आदमी आए रोते ही, जोर जोर से रो, लड़का मर गया एक भाई के पास है, किसी के स्वर्ग आश्रम पहुंचा रोता रोता सत्संग उस दिन ठीक हो गया। ये प्रत्यक्ष बात है, जैसे प्यासे को जल मिल जाए तो एक तृप्ति हो जाती है, भूखे को अन्न मिल जाए तृप्ति हो जाती है, छोटे बच्चे को माँ मिल जाए माँ मिल जाए शादी, ऐसी ये सत्संग तीनों की माँ है, ये मिल जाती है तो आनंद हो जाता है। तो उसने कहा कि महाराज आप कहते भी रामायण सुना दी, गीता सुना दी, भागवत सुना दिए, सत्संग सुना दिए, बार बार क्या सुनते हो आप? विचार करो मैं वही आप भी वही वही बात में सुनाता हूँ, वही आप सुनते हो बार बार फिर सुना देता हूँ। कहते बार बार सुनने पर भी फेर नहीं लगती। एक संत ने कहा था मेरे को कि बातें तुम वही बार बार कहते हो परंतु वही सुनने की मन करता है। हम जानते हैं वही बातें हैं फिर भी सुनने को मन करता है, कोई नई बात कहाँ से लाओ बताओ। मेरे मन में आता है कभी कभी ऐसा आता है भाव कि आप तो इतने उत्साह से आते हो और हम क्या सुना है, पहले सुनाई हुई बात है और सुना देते हैं, दो बार सुना देते, चार बार सुना देते। एक सूरदास जी थे, ऐसी बात हमने सुनी है, सूरदास जी थे तो महाराज पद गाओ तो अपना पद गा देते, दूसरा कहते हो महाराज पद गाओ तो कोई पद फिर गाते, कोई एक पद फिर गाते थे, फोर के मेरा पद सुनाओ वो ही सुना दिया। तो बोले कि बाबा जी एक एक पद सुनाते हो जो सुनाओ। सूरदास जी बोले देखो मैं जगता हूँ तो सुनाता हूँ, सोता हूँ तो यही पढ़ा रहता है यही पढ़ाई कौन सुना है ये भी आगल तू पड़ी हो बच्चों है तो इसलिए हमारी बात यही है भाई बार बार सुनाओ तो और क्या करें बताओ। हमने सुना हुआ तो बात ऐसी हमारे में ऐसी पड़ी रहती है, सुनाओ तो काम आ जाती है, बार बार वो सुनाते तो सो जाता हूँ तो वो मेरा बाकी रहता है, कौन सुना बताओ फिर जाते जब सुना हुआ। ऐसे हमारे पास तो वही पद है महाराज, वही पद गा देते हैं, वही श्लोक पढ़ देते हैं, वही गीता जी की बात कर देते हैं, रामायण की बात कर देते हैं। अब बातें कोई नहीं सुनी आपने, राम जी की, भरत जी की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की बात कह दी, अब आप कितनी बार सुनी होगा आपने, कई बार आपने पढ़ी होगा, अब नई बात है कोई फिर भी आप सुनते हो, हिम्मत है आपकी विशेष बात। जैसे क्या सुने समझ वही बात कहते हैं। एक संत ने कहा था कि मैं व्याख्यान नया नया सुनाता हूँ, स्वामी तो वे की भी बातें सुनाते हैं, मैं सुनाता हूँ नया अच्छे पंडित थे व्याख्यान देते थे, वो ही कलकत्ते की बात है, मैं तो आपको नया नया व्याख्यान सुनाता हूँ, स्वामी जी वो की भी बातें कहते हैं पीछे। मंडलेश्वर होते बड़े बड़े व्याख्यान दाता, इनके किसी पांच व्याख्यान के 10, 21, 30, 40, 50 व्याख्यान है, वो याद करते हो एक शुरू करते 50 दिन वो के वो कहे, अरे 50 दिन बीतने बाद वही कहे तो नहीं लगे। तो मैं तो नए नए व्याख्यान देता हूँ, ऐसा भी तो वही बात करते ना सो तो बीते थे भाव ना भाव बीते थे सतो भी गीता में वही सुनो तो क्या सुनते हो तुम। अरे लोग मेरी बात सुने इससे आज से आओ लोगों को कि कैसे बड़े आदमी है ये बिल्कुल बेखर है। अब नई बात क्या मिलती जैसे आप आते हो सुनते हो, तो नई बात नहीं है, बूटी नई थोड़ी होती है, पर सखी पर सूखी वही बूटी है, पूर्ति वही नवला भी नहीं, पर शक्ति नहीं आ जाती है। ये सब दिन नहीं आ जाते। ऐसे सत्संग करने से एक शांति मिलती है। मैं तो आपको सुनाया था ना, ये बात मेरी देखी हुई है, मैंने सुनाई थी ना, 86 की बात है वो। अब तो वही कथा सुनाने लगा, एक दो दिन सुनाने मात्र से हमारी हलचल मिट गई। हमने देखा है, औरों को भी देखा है, हमने अपने को भी देखा है, संताप बढ़िया था। कभी हलचल हो तो राम 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 15-20 मिनट करो, बंद लगा तो प्रत्यक्ष रूप मिलता है। इतना रुपयों से नहीं मिलता है, लोग तो रुपयों का ज्यादा है उसको कीमती समझते हैं। सत्संग को क्या कीमती समझे, परंतु सत्संग से जो शांति मिलती है वो रुपयों से नहीं मिलती। लाखों रुपये करोड़ों रुपये जिनके पास में है, जल रहा है हृदय, नौकरों से दुखी है, स्त्री से दुखी है, बेटों से दुखी है, कमी कमी नहीं, मकानों की कमी, मोटरों की कमी, 5,000 मोटरों की मोटर की कमी, फैक्ट्री चले गई तो भी कमी, लाखों रुपए पैदा फिर भी कमी, हम लोग कुछ भी पैदा नहीं है तो उसका कमी नहीं है, कोई कमी कमी का है बताओ। एक माई ने कहा था कि मेरे पहले बहुत विचार रहता, अभी कैसे काम चलेगा, बूढ़े हो गए अब क्या करें, अवस्था वृद्ध हो गई, सही रोग ही रहता है, परंतु चिंता नहीं होती, चिंता नहीं होती, सत्संग करते। एक संत ने कहा कि मेरे बहुत विचार आता था, परंतु मन में भी रुपये में कैसे काम चलेगा, अब वो तो मन में निकल गई, रुपये में काम चलता थी, मेरी क्या है, ये सत्संग ऐसा होता है। लोगों ने कहा है हमारे को, इस वास्ते हमारे शास्त्रों की बात नहीं की, हम करके देखा है, लोगों पर भी देखा है, आज मर गए आप भी देखते ही हो कितनी शांति मिलती है। तरह तरह का मसाला उछला आता है, मेरा तरह तरह का राग द्वेष काम क्रोध लोभ अहंकार अभिमान, मेरे क्या क्या कर इतना उछला हुआ है, सत्संग करते शांति जाते हैं। तो ये योजना करने का है, सबसे किसी फायदा होता। नारायण 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 नारायण, अब शंकाओं से बोलो भाई, अपने तो सत्य दिशा लग जाओ, गीता जी का पाठ करो वही पाठ है, रामायण का पाठ करो वही रामायण है, पहले कल करिए वही पाठ है, आज कुछ नहीं तो रामायण आ गई, हनुमान साहब जी का पाठ करो रोज ना करो वो करो ही पाठ और श्री गुरु चरण सरोज अच्छा लगता है, बताओ कुछ नया हो गया, वो नया हो जाता है, शांति देता है, खुराक है खुराक,